असल चीज है वरना संभव और वो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवत भजन, विष्णु आराधते। वर्णाश्रम चारवता पुरुषी न पर पुमान विष्णु आराधते न अन्य तत्रोष कारण। द होल सिविलाइजेशन सभ्यता वैदिक सभ्यता है तो उद्देश्य है विष्णु आराधन, विष्णु आराधते। बाकी मुश्किल है कि नते विदु साथ गति विष्णु, ये सब जानते नहीं जिसको साथ गति किधर होनी माँ में वा शरण गत, ये साथ गति भगवान जैसे बोल सर्वधर्मान परित्यज्य मामी कंग शरण, ये साथ गति। तो इस शास्त्र में सब जगह में यही समझाया गया है कि रीच द गोल ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या, कि वर्णाश्रम धर्म जो है इसका भी उद्देश्य वही है विष्णु आराध्यते फंक्शन नान्य तत्व उस कारण। विष्णु आराधन के लिए सामाजिक विभाग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और पारमार्थिक विभाग ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म तो टूट गया सब है, नाम से है काम से नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विष्णु आराधन के लिए है तो उद्देश्य विष्णु आराधन। अब वो वर्णाश्रम जो सिस्टम वो तो टूट गया है, वो फिर रिएस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए शास्त्र सिद्धांत से चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन संकीर्तन परिवर्तन किया, ये शास्त्र सिद्धांत है। कलौ दोष निधि राजन ही अस्ति एको महान गुण। कलयुग में भागवत द्वादश स्कंध में कलयुग का विवरण है सब। 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत लिखा गया था, उसमें भविष्य में क्या क्या होगा कलयुग में सब बताया गया। तो उस प्रसंग में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताया कि महाराज ये कलयुग है, ये दोष की निधि समुद्र, कहाँ तक इसको दोष और निर्दोष आप विश्लेषण करेंगे? समझ लीजिए एक दोष का समुद्र है, केवल दोष ही दोष। तो इसमें एक महान गुण है, वो कलयुग के लिए विशेष करके, क्योंकि कलयुग में विशेष करके सब पतित है। पतित का कारण, पतित बोलने का कारण यही है कि जो जीवन का जो उद्देश्य है वो भूल गया है, वो केवल इंद्रिय तर्पण करने के लिए दिन भर परिश्रम कर रहे हैं, बाकी जीवन का उद्देश्य क्या है वो नहीं जानते। ये कलयुग का विशेष लक्षण, सबसे सब युग में यही बात है कि भगवान को भूल जाते हैं और ये शरीर पालन करने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं। तो आज नहीं, अनेक हजार वर्ष पहले यही लक्षण ऋषभ देव अपने पुत्र को समझाया, बेटा ये जो शरीर है अयंग शरीर, ये जो शरीर है नीलोक मनुष्य समाज शरीर सभी को मिलता है, कुत्ता को भी मिलता है, गधा को भी मिलता है, बाकी ये जो मनुष्य को शरीर मिला है ना अयन देह, ये जो शरीर है नायन देह देव भाजन निलोक मनुष्य समाज में जिसको शरीर मिला है कष्टान कामान न अरहते कामान अरहते वीर भुजान रे ये शरीर को दिन भर खाली परिश्रम में लगा देना और जीवन का उद्देश्य जो है विष्णु आराधन उसको भूल जाना ये उचित नहीं। ये बहुत दिन पहले समझा ना अरहते क्योंकि ये जो शरीर का साधन आहार निद्रा भय मैथुन कुछ खाने को चाहिए कुछ सोने का जगह चाहिए आहार निद्रा और भय से कुछ व्यवस्था करनी चाहिए आहार निद्रा भय मैथुन आज स्त्री पुरुष का संभव तो ऋषभ जो कहते हैं ये सुअर भी करता है इसमें कोई बहादुरी नहीं है वीर भुजा विशेष करके बताया वीर भुजा वीर भुजा वीर का अर्थ होता है मैला और जो मैला खाने वाला जो है सुअर वो भी दिन भर परिश्रम करते हैं इसीलिए कहाँ खाने का चीज है कहाँ सोने का चीज है और कहाँ स्त्री संभोग करने का व्यवस्था है और कहाँ भयभीत से बचना है इसके लिए नहीं ये तो जानवर भी करता है सुअर तक बता दिया वीर भुजा फिर किस लिए है तपो दिव्यम ये जो मनुष्य शरीर है तपस्या करने का दिस इज वैदिक सिविलाइजेशन तपो दिव्यम पुत्र का जीना सत्तम शुद्धे ये जो हमारा सत्ता है आई एम सबको जानते हैं आई एग्जिस्ट ये सत्ता शुद्ध गण की क्या अशुद्ध है क्या जरूर अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध है कि तुमको मरने पड़ता है भगवत गीता में भगवान साक्षात बताते हैं न हन्नते हन्नमाने शरीरे जीवात्मा जो है वो शरीर ध्वंस हो जाने से वो मरता नहीं न हन्नते अंतवत्तु मे देहा नित्य शोका शरीर न ये जो अंतवत जो है जो नष्ट होने वाला है वो है शरीर और शरीर का अंदर में जो कि आत्मा है वो नष्ट होने वाला नहीं तो शुद्धि तो सत्या ये जो सत्ता शुद्धि शुद्ध सत्व स्पिरिचुअल शुद्ध तत्व का अर्थ होता है स्पिरिचुअल ये जो सत्ता है ये शुद्ध नहीं है अशुद्ध है क्योंकि त्रिगुणा प्रकृति क्रियमाणानी गुण ही कर्माणी सर्वस्व ये शरीर यात्रा निर्वाह होता है प्रकृति गुण ही सतरज तम गुण इसका ऊपर चलता है जिसको सतगुण है उसको अच्छा शरीर मिलता है ब्राह्मण का शरीर मिलता है देवता का शरीर मिलता है रजगुण है क्षत्रिय का शरीर मिलता है किसी प्रकार सब सदगुण कारण अनुगुण संग सदसद जन्म जोनी की ये जो ऊंचा नीच शरीर सब मिलता है उसका क्या कारण है कारण अनुगुण संघर्ष ये जो प्रकृति का गुण है सतगुण रजगुण तमगुण जिसका साथ मैं संग करूंगा उसी प्रकार शरीर हमको मिलेगा कर्मणा दैव नेत्री न जंतर देह उपपत्ति तो विभिन्न प्रकार जो शरीर हम लोग को मिलता है इसका क्या कारण कारण गुण संघर्ष ये जो प्रकृति का गुण हम लोग संग करते हैं जैसा एक रोग होता है इन्फेक्शन आप जान करके और अजान करके कोई रोग का बीजाणु को अगर संसर्ग करेंगे तो वो रोग से आपको भोगने पड़ेगा इसी प्रकार कारण गुण संघर्ष जैसे जैसे गुण से हम संग करेंगे उसी प्रकार हमको शरीर मिलेगा तो शरीर चाहे ब्राह्मण का शरीर मिले चाहे देवता का शरीर मिले और जो कुत्ता का शरीर मिले और नीच शरीर मिले, अंत वक्तु में देहा, ये सब अंत होने वाला है। और भगवत गीता में स्वयं भगवान पहले ही बता रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्ति देही नस्मिन यथा देही कौमान यौवन जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर होगा। अब किस प्रकार देहांतर होगा, आगे जाकर के हमको क्या शरीर मिलेगा, ये सब हम लोग नहीं जानते। यद्यपि शास्त्र में है सब कुछ बताया गया है, जो जैसा तुम शरीर चाहते हो ऐसा मिल जाएगा, इस प्रकार साधन करो। जानति देव वृता देवान पितरी जानति पितरी वृता भूते जा जानति भूतानी मज्जा जिनो भी जानति माम। यदि उच्च लोक में जाने चाहते हो, स्वर्ग लोक, जन लोक, महलोक, तपलोक, अनेक सब उच्च लोक है, उधर भी जा सकते हो। जानति देव वृता देवान पितरी लोक जा सकते हो, पितरी जानति पितरी वृता भूते जा जानती भूतानी, और यदि इधर ही रहने चाहते हो वो भी हो सकेगा। और मज्जाजिनोपी जानती मां, और अगर भगवान का पास जाने चाहते हो तो भगवत भजन कर लो। सब चीज खुला हुआ है, जैसा हम लोग चाहते हैं। जथे छसी तथा कुरु, भगवान अर्जुन को बताया कि तुमको हम सब बता दिया, अब तुम इसको सोच करके विवेचन करके जैसा चाहते हो ऐसा करो। तो सब हमारा ही हाथ में है, हम देव लोग में जा सकता हूँ, पृथ्वी लोग में जा सकता हूँ, इधर भी रह सकता हूँ, और यदि चाहे हम तो भगवान का पास जा सकता हूँ। ये सब चीज शास्त्र में बताया है किस तरह से जा सकते हैं। तो वही चीज ऋषभ देव बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये जंक्शन है, तुम जैसे चाहते हो आगे जाकर के मिलेगा, क्योंकि देहांत तुम्हारा तो हो गई। तथा देहांतर प्राप्ति धीर सतनमयति, जो बुद्धिमान है, धीर है, वो बहुत जल्दी समझ जाता है जहां देहांतर होता है। जो महामूर्ख होता है वो देहांतर क्या समझता ही नहीं। आजकल ये एजुकेशन है, महामूर्ख, बड़े बड़े सब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महा महामूर्ख सब देहांतर समझता है। वो लोग कहते हैं स्वामी जी ये शरीर जब मिट जाता है सब मिट गया। बड़े बड़े लीडर लोग, बड़े बड़े सब प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट, वो देहांतर क्या है नहीं समझते। और भगवान स्वयं बता रहे हैं और उदाहरण भी दे रहे हैं कि कुमार जो बने में जरा जैसा एक बालक है उसको जवान होने ही पड़ेगा देहांतर, वो बालक शरीर नहीं रहेगा, उसको युवक का शरीर मिलेगा। अगर बालक अगर कहते हैं नहीं हम युवक नहीं होंगे, तो वो कहने से क्या हुआ, प्रकृति का नियम है होने पड़ेगा। और अगर युवक कोई कहते हैं हम बुढ़ा नहीं होंगे, तो बोलने से क्या होगा, होने ही पड़ेगा। तथा देहांतर प्राप्ति, तुम बोलने से क्या होगा, हम देहांतर नहीं होंगे, वैसे ही देह में सब शेष कर दें, बोलने से नहीं होगा। प्रकृति क्रमाणी गुण कर्माणी सर्वोच्च अहंकार विमूर आत्मा कर्ता हम इति मन, जबरदस्ती बोलने से क्या छूट जाएगा, नहीं ये संभव नहीं। तो ये सब आजकल एजुकेशन दिया जाता है कि देहांतर नहीं है, परजन्म नहीं है, पूर्व जन्म नहीं है, और स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, और अनेक प्रकार शास्त्र में जो सब बताया गया है उसको मानते ही नहीं, तो क्या किया जाए। इतना मूर्ख हो गया ऐसा। और भगवान खुद बता रहे हैं जशास्त्र विधि मुसिज वर्तते कामकार न सिद्धि स्वभाव न थी, जो शास्त्र सिद्धांत है उसको जो मानते नहीं, अपना मनमाफिक काम करते हैं, उसको जीवन तो असफल होगा ही, न सिद्धि स्वभाव न दी और न सुखम, सुख भी नहीं मिलेगा, और परागति का तो बात ही छोड़ दी। ये सब चल रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में जो हमारा शास्त्र में जिस प्रकार लिखा है उसको ग्रहण किया जाए, जीवन को सुधारा जाए और आगे जाके हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है उसको सफल किया जाए। तो ये सब ऋषभ देव आज नहीं, बहुत दिन पहले यही चीज यही बताया जाता है कि देहांतर प्राप्ति और ये क्वेश्चन देहांतर क्यों है। देहांतर इसीलिए होता है कि सत्ता शुद्धि नहीं। जैसा कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसके दुख भोगने पड़े। तो इस शास्त्र में बताते हैं जहां आपने भौतिक शरीर ग्रहण किया आपको दुख भोगने पड़ेगा। दुख अनेक प्रकार होता है, कुछ ना कुछ आपको दुख भोगने ही पड़ेगा। क्योंकि असन्नपी क्लेश देहास देह, यद्यपि ये शरीर सब दिन के लिए नहीं है, जब तक ये शरीर रहेगा क्लेश देह दुख देगा। हम लोग सबको यही प्रयत्न करते हैं तो दुख निवृत्ति किस तरह से दुख निवृत्ति है। तो दुख निवृत्ति क्या चीज है वो जानते ही नहीं हम लोग। इसलिए भगवान साक्षात बताते हैं कि तुम्हारा जो असल दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तुम तात्कालिक सामयिक जो दुख निवृत्ति करते हो वो तो शरीर जो सुख मिला है वो शरीर का साथ साथ वो सब मिट जाए, फिर तुमको और एक शरीर लेने पड़ेगा अपना कर्म का अनुसार और उसका दुख भोगने पड़ेगा। तो यदि दुख से अत्यंत ही दुख निवृत्ति यदि चाहते हो तो ये सत्ता का शुद्ध करो, उसके लिए तपस्या तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धे तो सत्या सत्ता शुद्धि करो। अब वो सत्ता शुद्धि करने का मौका किस समय मिलता है, अयन देह निदेह निलोके नायन देह देहो भाजांग निलोके कष्टान कामान अनुभूति। इस शरीर को जो इतना मूल्यवान शरीर है जिसमें कि तुम सब दुख को नष्ट कर सकते हो यही शरीर में, वो शरीर को ये सुअर कुत्ता का ऐसे लगा करके केवल भोजन और श्री संभाग और आहार निद्रा भाई मृत्यु में और उसके लिए दिन भर तकलीफ करना ये उचित नहीं। ये ऋषभ देव का उपदेश नायंग दीह दीह भाजांग निलोके। चाहिए कुछ शरीर जब मिला है हमको कुछ खाने को चाहिए, ये तो जरूरी बात है, और सोने का भी जगह चाहिए और इंद्रिय है उसको भी थोड़ा भोग चाहिए और वैसे भी किस तरह से निवृत्ति हो ये जरूरी है, बाकी इसी के लिए केवल जीवन है ये महामूर्खता है। जीवन का और कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, तपस्या दिव्यम दिव्य चीज लाभ करने के लिए तपस्या। इसलिए समाज का विभाजन है जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो ब्राह्मण लग रहा है वो अपना जीवन में तपस्या किस तरह से करने होता है दिखाता है, समो दमो तिथिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ब्राह्मण आइडियल लाइफ वो दिखाते हैं, दिखाकर सिखाते हैं। इसलिए ब्राह्मण शिक्षक है, गुरु है, शास्त्र में बताया गया है। और क्षत्रिय ब्राह्मण से उपदेश लेकर के प्रजा जिस तरह से जीवन यापन करने से उसको उपकार होगा ये क्षत्रिय का काम है, और वैश्य का काम है खाने का चीज सबको मिले उसको बंदोबस्त करें, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खाने का चीज मिल जाएगा, कृषि कार्य करने से अन्न पैदा करने से भगवान खुद भी बताते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, खूब अन्न पैदा करो, खूब नहीं जितना जरूरत है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, और अन्न तभी संभव होगा जब ठीक ठीक बरसात होगा, पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञाद भवंती पर्जन्य। और यदि यज्ञ करेंगे आप तो यथा समय आपको वृष्टि मिलेगी, और जिसमें जमीन में आप अच्छी तरह से बड़ा सहज से अन्न पैदा कर सकेंगे। यज्ञाद भवंती पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव, ये सब शास्त्र में विधि है। सरल भाव से आपको खाने की चीज मिला और आनंद से रहा, और बाकी समय जहां को मिला तपो दिव्यम तप सागर, ये सिविलाइजेशन है, ये सभ्यता। और ये सभ्यता नहीं है कि केवल सुअर का ऐसा है दिन भर कहां गुहा है देखो जी देखो जी देखो जी, दिस इज नॉट सिविलाइजेशन। नायंग देह देहो हाजांग निलोक कष्टान, और उसके लिए दिन भर परिश्रम करना है, लाओ रुपया। इदम अद्दा माया लब्धम इदम प्राप्सी पुनर्धनम, ये जो आसुरिक सिविलाइजेशन है, अब तो इतना रुपया मिल गया है, अब इतना और चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह से सारा जीवन स्वतः ऐसे परिश्रम करके केवल खाने सोने और संभोग करने के लिए, ये जो सभ्यता है ये उचित नहीं है। कम से कम मनुष्य जीवन में ये उचित नहीं है, तपस्या करनी चाहिए। तपोदिग्बम, और कलयुग में वो तपस्या बड़ा सरल, ये आप जो बता रहे थे कलयुग में तो दोष ही है, परंतु एक सुविधा है, वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त सांग परम भजे, केवल भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करने से वो मुक्त संग हो जाता है। ये जो दोष है कलो दोष ने भी, ये दोष से छुट्टी मिल जाए, निर्दोष हो जाए, ये चैतन्य महाप्रभु बता है। चेत दर्पण मार्जनम, दोष सब कहाँ है, ये सब हृदय में ही है, सब जितना दोष हमारा है डार्टी थिंग्स वो सब हमारा हृदय में। ये जो हरिकीर्तन है ये चैतन्य महाप्रभु समझा है, जो हरिकीर्तन करने से पहली जो बात है चेत दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त है चित्त शुद्धि हो जाए। ये जो हम समझते हैं कि मैं ये हिंदू है कि मुसलमान है, मैं इंडियन है मैं अमेरिकन है, ये सब क्या चीज है, ये सब उपाधि है। असल जो है हम अहंग ब्रह्मास्मि, ये असल परिचय, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, सब शास्त्र में बताया गया है बड़ा सरल भाव से। तो इसके लिए परिश्रम करना चाहिए और उसके लिए थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। अब देखिए इसका प्रमाण स्वरूप, ये जो यूरोप अमेरिका में सब ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए कुछ तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या, चार चीज, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, चार। जैसा हम ये चौकी में बैठे हुए हैं इसको चार पहिया है, इसी प्रकार पापमय जीवन जो है उसको चार पहिया यही है, कि इलिसिट सेक्स और मांसाहारी भक्षण और जुआ खेलना और नशा भांग करना, बस ये कलयुग में यही चीज फैला हुआ है सारा दुनिया में, तो उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। बाकी तपस्या छोड़ने में हमारा तकलीफ होगा, बाकी तप का अर्थ होता है जो वॉलंटरीली थोड़ा तकलीफ सहन कर लेना, उसका नाम है तपस्या। तपस्या ये नहीं है मैं जो तो के रह गया और टेबल चेयर में बैठ करके सीधे फूकते फूकते तपस्या हो जाएंगे, नहीं, तपस्या के लिए थोड़ा तकलीफ उठाना है। तो ये जो बालक लोग हैं ये जो तपस्या कर रहे हैं कि चार चीज छोड़ देना, क्योंकि मर गया है ये बचपन से, वो बहुत जब शिशु रहता है उनका माता पिता इसको सिखाता है पाउडर, वो मीट पाउडर उसको पानी में घोल करके उसको जबरदस्ती चमचा से खिलाएगा सिखाएगा, ये देश है। तो बेचारी का दोष नहीं है, शुरू से सिखाया गया मांसाहारी भक्षण पिता माता शराब पीता है और बच्चा बैठे हैं उसको सोडा वाटर लेमनेड देता है, वो भी सीखे, अभी शराब नहीं पी सकेगा, थोड़ा सोडा वाटर पिए, बाकी वो सीखता है। सॉफ्ट ड्रिंकिंग जिसको बोला जाता है, सॉफ्ट ड्रिंकिंग, तो उसको बेचारी को सिखाया जाता, वो जब भूल गया तब साकार करने के लिए हमारा भारत दिया कितने मुश्किल है, ताकि नहीं तपस्या नहीं करेंगे, बाकी तपस्या करनी चाहिए, बिना तपस्या काम सफल नहीं। पहले तो बड़े बड़े ऋषि लोग, मुनि लोग, राजा लोग सब घर छोड़ करके जंगल में जा करके हजारों बार तपस्या करते थे, वो तो कलयुग में संभव ही आएंगे। तो थोड़ी सी तपस्या है कि ये चार चीज छोड़ दो और भगवान का नाम कीर्तन करो, ये क्या मुश्किल है क्या? ये जरूर करनी चाहिए, यही हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट सारा दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, और वही चीज भारतवर्ष का तो ही है, आप लोग भी ग्रहण कीजिए। ये आसुरिक जीवन यापन करने से कोई लाभ नहीं है, इदम अद्धम आलब्धम इदम प्राप्त पुनर्धनम, आज इतना रुपया है फिर कल इतना रुपया हो जाएगा, फिर कल और परसों और कुछ हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, ये सब होते होते एक दिन जमरा जाएगा, लात मार के सब छीन छान लेकर के जाओ कुत्ता बनो, ये होता है। हाँ, तथा देहांतर प्राप्ति, जैसा कर्म करेंगे ऐसे शरीर मिलेगा, वो प्रकृति, प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वस्व, वो तो प्रकृति का हाथ में है, उस समय तो बड़ा साहब होने से कुछ काम नहीं चलेगा। उस समय बड़ा साहब प्रकृति है कि बेटा तुम कुत्ता बनो, कुत्ता का तुमको मनुष्य जीवन दिया गया था उसको तुम व्यवहार नहीं किया, कुत्ता का ऐसा काम किया है।
ये जो जब संकीर्तन जब उसके द्वारा भगवत सेवा कृष्ण भवनम तिशा कृष्णम सांग पांगा सुपाषगम जग संकीर्तन प्रागे जजंती ही सुने वैदिक शास्त्र में दो शब्द मिलता है, एक सुमेध शब्द और एक अल्पमेध शब्द। मेधा का अर्थ होता है ब्रेन सब्सटेंस, ब्रेन सब्सटेंस ज्यादा होने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, और ब्रेन सब्सटेंस कम होने से मूर्ख होता है, गधा होते हैं। तो दो शब्द आया, एक अल्पमेध शब्द और एक सुमेध। भगवद गीता में है जो भगवान को छोड़ करके और सब इतर देवता को जो पूजा करते हैं तब भगवती अल्पमेध शब्द, ये अल्पमेध है जिसका ब्रेन सब्सटेंस कम है। लेकिन दुर्गा पूजा की, दुर्गा पूजा करने से बहुत ही लाभ होता है। गणम देवी, रूपवती भाग्यान देवी, जशो देवी, ये सब मिलता है दुर्गा पूजा करने से, धन मिलता है, जस मिलता है, रूपवती स्त्री मिलती है। ये शास्त्र में जो लिखा है ये अन्याय नहीं, ठीक लिखा। बाकी ये किसके लिए है? उसके लिए है जिसको मेधा कम, उसके लिए तद भवती अल्पमेध शब्द, तद भवती अल्पमेध शब्द। अल्पमेध शब्द इसलिए है, समझ लीजिए आप घर में आए हैं, बहुत खातिर आप कर रहे हैं, अब जब जाएंगे आप जो 5000 रुपया भी दिया, फिर ये शर्त में दिया ये घर का बाहर में निकलने का पहले ही आपको जो कुछ दिया दिया है सब छीन लीजिए। अभी घर में बैठे हैं, आपको तो चंदा करके हमको 5-10 हजार रूपया दिया, अभी इस शर्त में दिया कि घर का बाहर मैं जाऊंगा ये सब रूपया हमसे छीन लीजिए। तो वो रूपया अगर हम ग्रहण करें तो आपको मेरा चाहे कि नहीं बोकाए कि नहीं, ये जो हमको रूपया पैसा दिया है और इस शर्त में लिया कि घर का बाहर जब जाए उसके सब छोड़ दे लेके हमारा क्या हो। ये बुद्धिमान जो है बोलते भाई ये सब रूपया हमको लेके क्या हो, तुम जब छीन लोगे घर के बाहर में जाने का समय तो फिर हमारे लिए लेने का क्या जरूरत। जो लेता है वो अल्प में देता है। इसी प्रकार अभी शरीर में हमको धन दौलत उत्तम स्त्री पुत्र इत्यादि सब कुछ मिला है, बस ये शरीर जब हम छोड़ेंगे सब सीखे मृत्यु सर्वहरस्य हम भगवान पिता में बताते हैं। मृत्यु का अर्थ क्या होता है, जो कुछ तुम्हारी संपत्ति है जो कुछ बना है वो सब छीन लेंगे और फिर दूसरा एक शरीर तुमको दिया जाएगा। उधर ये सब संपत्ति और धन और जो कुछ है उधर तुम ले नहीं जा सकते, वो तो तुम्हारा कर्म का अनुसार जो शरीर मिलेगा उसी प्रकार शरीर से तुमको भोग करने पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र में कह रहे भगवान खुद बता ये जो सब देवता से मांग लेना मैं भौतिक संपत्ति किसके लिए है, तद भगवती अल्पमेर अंतवत्तु फलम तेषा तद भगवती अल्पमेर। जो ये जो सब फल है ये अंतवत्त अंत हो जाएगा शरीर का शांत, कुछ चीज तुम नहीं ले जा सकते। इसलिए ये चीज के लिए जो लालायित है उसको बताया गया अल्पमेर। और सुमेध ऐसा उसको काम क्या है कि भगवान से संपर्क बना करके भगवान को समझ करके भगवान की सेवा में निजुक्त होकर के जीवन सफल है वो सुमेध, उसका नाम है सुमेध। सुमेध ऐसा जो है वो शरीर समझने के बाद उसको बहुत लाभ है। क्या लाभ है, तत्ता देहम पुनर्जन्म नहीं, वो शरीर छोड़ करके फिर भौतिक शरीर ग्रहण नहीं कर। तो क्या होता है मां नहीं भगवान के पास जाने होता है चले जाने, तो भगवान के पास जाने के लिए भगवान का जैसा शरीर है वो शरीर मिलता है चिन्मय शरीर। तो इसलिए सब शास्त्र में यही बताया है जो तुम्हारा अंतिम जो अति गोल ऑफ लाइफ है वो विष्णु भगवान। शास्त्र ने ये सभी बताया है कि एक एक युग में कौन कौन भगवान का जो अवतार उसको पूजा करना है सेवा करनी चाहिए। तो कलयुग के लिए ये बताया कलयुग कि कृष्ण वर्णम कृष्ण अकृष्ण भगवान कृष्ण स्वयं अवतार ग्रहण किया है जिसका शरीर का रंग अकृष्ण कृष्ण नहीं, कृष्ण अवतार में भगवान का शरीर कृष्ण वर्ण और कलयुग में जो भगवान का अवतार है वो कृष्ण ही है, बाकी उनका शरीर का जो रंग है अकृष्ण। तो अकृष्ण का अर्थ होता है जो कि कृष्ण नहीं है, वो लाल भी हो सकता है सफेद भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है, ये सब भगवान का एक एक युग में एक एक रंग होता है। वो गर्भमुनि जब कृष्ण का गोष्ठी विचार कर रहा था उस समय बताया जी महाराज नंद महाराज ये जो आपका पुत्र है ये पहले शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्ण का अंग था, ये आपका कुछ जन्म नहीं है। पहले पहले उनका कभी रक्त वर्ण सत्युग में, कभी शुक्ल वर्ण, कभी पीत वर्ण, ये सब हो चुका है। अभी जो आपको आपका पास आए हैं संतान रूप से, ये कृष्ण वर्ण। जो कृष्ण का अर्थ होता है कि वो लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, पीत भी। बाकी कलियुग में ये जो गौरांग महापुरुष है, ये सुवर्ण पीतमर्ण, इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्ण। कृष्ण ही है परंतु चरित्र रंग से अकृष्ण है, पीतमर्ण। और सांग पांगास पार्षदम, उनको साथ में सब पार्षद लोग हैं। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाचारी प्रभु भक्त। तो ये सब पार्षद है, इलेवन कैंटो भागवत में ये सब वर्णन है। एक एक युग का भगवान का क्या वर्णन था, कैसा शरीर का फीचर था, ऐसा बताए। तो ये कलयुग में बताते हैं कि ये जो भगवान का रूप है अकृष्ण और साथ साथ में पार्षद, कृष्ण वर्णन दिशा अकृष्ण सांग पांगार्थ पार्षदम, ये जो भगवान का रूप है जगदई संकीर्तन जजंती सुमेध, ये सुमेध, ये जो भगवान का अवतार है, इनको जो मेधावान व्यक्ति है जिसका ब्रेन ठीक है, ब्रेन सबस्टेंस ठीक है, वो जिस संकीर्तन जगत द्वारा इनकी सेवा की जाती है। तीन भगवान मूर्ति दिखाई गो, ये मूर्ति रख करके और ये जैसा भी संकीर्तन किया, ये जगत द्वारा पूजा करने से ही, सेवा करने से ही भगवत सेवा पूर्ण होता, इतना सरल। जो चैतन्य महाप्रभु निताय जो और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद पंचतत्व, इनको तस्वीर रख लीजिए और घर गृहस्थ सब जितने मेंबर है ये कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा बस भगवत सेवा। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल, बहुत सरल। निकाय गौर का तस्वीर रख लीजिए और मेंबर तो होता ही है घर में, बाकी जैसा ही अपील कर लिया क्योंकि भगवत सेवा। ज्यादा झंझट करने का कोई जरूरत नहीं, अगर मंदिर करें ना करें, अभी मंदिर कर सके तो कीजिए, जिसका बाद धन है वो तो सब धन भगवान की सेवा में लगाएगा, ताकि जिसके पास कुछ नहीं है उनके लिए क्या मुश्किल है। एक चैतन्य महाप्रभु का तस्वीर रख करके और घर गृहस्थी सब बैठ करके हरे कृष्ण कीर्तन करे तो उसमें क्या नुकसान होता है, ताकि भगवान को मिल जाए, इतना ही कार्य से उसको भगवान को मिल जाए, ये करीब सुविधा। अगर आप भगवान को कुछ दे सके न सके, भगवान तो भीख मांगा भी आए नहीं, भोगा भी है हमारा ऐसा। बाकी भगवान तो भक्ति से अगर कोई कुछ देता है तो भगवान खाता है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम जो मी भक्त्या प्रगच्छति तदहं भक्ति उपरीतम अस्नामी प्रजतात्मक। जो धनी है वो तो बहुत कुछ दे सकते हैं, पर जिसके पास कुछ है गरीब से गरीब, तो उनके लिए भी भगवान बहुत है, नहीं कोई दुख की बात नहीं है। एक पत्ती ले आओ तो पत्ती बहुत मिल सकता है, और एक फूल ले आओ वो भी मिल सकता है, थोड़ा पानी ले आओ, तो गरीब से गरीब इसको संग्रह कर सकते। यदि आपको बगीचा में आकर के कोई गरीब बच्ची हो जमान दी कि आपको एक फूल हम लेता हूं, एक पत्ती क्या करोगे, राम भगवान ले जाओ सब कुछ बोलते हैं, ऐसा कोई मूर्ख नहीं है कि बोलेगा नहीं। वैसे ऐसा मूर्ख भी आया ये लोग अमेरिका, उनका बगीचा में बहुत सब पेड़ है और फल भी है, वो सब गिर गिर के जाएगा, वो सड़ जाएगा, वो भी ठीक है, कोई जाकर मांगे तो नहीं है कभी। वो बोलता है यही शोभा, ये गिर के सड़ जाता है, सूख जाता है, यही शोभा। खैर, पत्रम पुष्पम फलम तो हम जो भी भक्ता है प्रदुच्छति सब कोई संग्रह कर सकते हैं, और कहीं भी ये गौर निकाय का पिक्चर रख करके जो भी होए, इसमें कोई एजुकेशन का जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा सारा दुनिया में बोलता है, उसको एबीसीडी सिखाया नहीं जाता, बल्कि बोलता है, शब्द सुनते ही बोलता है। और अभी बच्चे लोग भी ताली देनी शुरू किया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये कलयुग का साधन है। जग गई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुने, जो मेधावान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ये संकीर्तन जग द्वारा ये जो भगवान का अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य, इनको सेवा करें। तो बस भगवत सुनो, जग गई संकीर्तन प्राय जजंती सुने, ये सब कोई घर घर में कर सकता क्या मुझे। सेवा करने के लिए अपराध ही नहीं है, सारा कृष्ण सेवा में अपराध का विचार है, सेवा अपराध। और जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु ये अपराध ग्रहण नहीं, जितना भक्ति किया उतना ही
करना। सभी पुंसान परो धर्म यतो भक्ति रघो फजी अहितुकी अप्रतिहता जया आत्मा सुप्रसिद्ध। कल ये श्लोक का व्याख्यान किया था कि परधर्म धर्म इंग्लिश डिक्शनरी में है, उसमें बोलता है कि ए फेथ, ए काइंड ऑफ फेथ, विश्वास। कोई बोलता हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, कोई बोलता हम मुसलमान धर्म में विश्वास करता हूं, बाकी धर्मं तु साक्षात भगवत्वनिकम्। धर्म जो है वो भगवान का दिया हुआ है, जैसे भगवान का दिया हुआ ये दुनिया है, चंद्र है, सूर्य है, आकाश है, अनेक वस्तु भगवान दिया, तो उसमें आप बिलीव करें ना करें वो चीज तो रहेगा। इसी प्रकार असल जो धर्म है उसमें आप विश्वास करें या ना करें धर्म ही रहेगा। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर, देयर इज नॉट पॉसिबल। जैसा राजा का कानून है वो आप विश्वास करें या ना करें आपको मारने पड़ेगा। आप अगर कहते हैं कि हम नहीं नहीं विश्वास करते, अभी जो ऑर्डिनेंस है हम इसमें विश्वास करें, आप ना कीजिए, बाकी आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आपको सजा मिलेगा। इसी प्रकार चमराज वो सिक्स कैंटो में बताया है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदु री शयनापि देवा न विदु न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो कृष्ण विद्या धर चारणालय। ये जमराज एक्सप्लेन कर रहे हैं जमदूत का सामने, वो जो अजामिल तो ले नहीं जा सका जमराज का पास, तो उस समय वो लोग जानते हैं जमराज धर्मराज है और ये अधार्मिक और इतना पाप किया था, इसको माफी सब हो गई, क्या बात है। तो धर्म का विषय पूछा, महाराज धर्म क्या चीज है, तो उसका उत्तर में जमराज जी बताया था कि धर्मं तु साक्षात भगवत प्रेम, जो भगवान कह देते हैं वो धर्म है। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुर ऋषय, बड़े बड़े ऋषि लोग जो है वो भी नहीं जानते। धर्म सतत्व निहितं गुहाया, तो बड़े बड़े ऋषि लोग, आप हमका बात तो छोड़ दीजिए, तो बड़े बड़े सब ऋषि लोग है वो भी नहीं जानता। नति विदुरी क्षय नाथ देवा, और जो सब बड़े बड़े देवता लोग हैं ब्रह्मा लॉर्ड शिव और इंद्र चंद्र वरुण आदि बड़े बड़े सब देवता लोग वो भी नहीं जानते। और कहते हैं न सिद्ध मुख्या, बड़े बड़े साहब जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं उनका जो मुख है प्रधान प्रधान है वो भी नहीं जानते। न सिद्ध मुख्या असुरा, और असुर लोग जो है और ये मनुष्य है ये कोई भी नहीं जानते। कुतुन विद्या धरु चारण आ गया, और साधारण विद्याधर चारण ये क्या सब समझेगा। तो धर्म का जो तत्व है वो है, जो भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको मालूम है, इसलिए शास्त्र ने बताया है कि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया महाजना जीन सक। महाजन लोग जो धर्म को ग्रहण किया है जैसे बताए हैं वो धर्म है। और वो महाजन कौन कौन है वो भी बता दिया है। महाजन का नाम दिया है स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बली बैया सती भयम दाद सहित बिजानी मो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं जं ज्ञाता अमृतम अस्मृति। अगर धर्म एक दफे कोई समझ गया, जं गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं, समझना भी बड़ा मुश्किल है, दुर्बोधं जो ज्ञात्वा, जिसको समझने से क्या लाभ होता है, अमृतम अस्मृति, फिर वो उनका जो ये जो अवस्था है हम लोग का मृतम, ये जो अभी जो अवस्था हम लोग का है ये मृत अवस्था, ये जो शरीर है ये तो मृत है ही है, इसमें जब तक वो आत्मा जीव शोर है तब तक चलता फिरता है। असल में ये लंप ऑफ मैटर है, तो ये हमको प्राप्त करने पड़ता है। भुत्ता भुत्ता प्रलीयत, एक शरीर हम लोग ग्रहण करते हैं, फिर कुछ दिन के लिए उसमें लंप झंप करते हैं, ये हमको शरीर मिल गया है, भारतीय शरीर मिल गया, अमेरिकन शरीर मिल गया, और ऐसा कुत्ता भी समझता है हमको कुत्ता का समझ शरीर मिल गया, बंदर भी समझता है। तो शरीर में जिसमें आत्मज्ञान है वो कुत्ता बंदर का ऐसे ही समझ लिया, सैव गोकर। जस्वात बुद्धि पुनपीति धातु के सधिक कलोत्ता दिशि भौम युजधि जत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करिचित जनेशु अविज्ञेशु सैव गोकर। तो जो शरीर में आत्मबुद्धि जिसका है और एक दुनिया चल रहा है वो है गोकर जानवर। गो का अर्थ होता है गाय और खर का अर्थ होता है गधा। सैव गोकर तो इसलिए वास्तविक धर्म को जो समझ लेता है जैसे इधर बताया है गुह्यं विशुद्धं। विशुद्ध का अर्थ होता है कि ये भौतिक वस्तु नहीं है। भौतिक वस्तु जो है ये सब अशुद्ध है। अशुद्ध होने का कारण ये सब नष्ट हो जाता है। और विशुद्ध का अर्थ होता है जो नष्ट होने वाला है आत्मा। न हन्नते हन्नवाने शरीरे वो शुद्ध है। शरीर शुद्ध नहीं है। शरीर को शुद्ध करने के लिए ही धर्म आचरण करने पड़ता है। इसलिए विभिन्न धर्म ये जो वर्णाश्रम धर्म इसको धर्म कहा जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। क्योंकि हम लोग सब अभी अशुद्ध अवस्था में है तो इसको नियमित करने के लिए विशुद्ध अवस्था में जाने के लिए ये जो विभाजन है ये अवश्य जरूरत है। इसको छोड़ने से फिर वो अशुद्ध ही रह जाता है विशुद्ध नहीं होता है। तो इसलिए हमारा वैदिक सभ्यता में जो वर्णाश्रम धर्म है उसको पालन करना यही मनुष्य जीवन का प्रारंभिक कार्य है। और वर्णाश्रम जो समझता नहीं और उसके लिए जो प्रयत्न नहीं करता है वो अशुद्ध ही रह जाता है। उसको जन्म जन्मांतर वही एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर लेना और फिर कुछ दिन काम करना फिर मर जाना फिर एक शरीर लेना ये आवागमन रिसाइकल ऑफ बर्थ एंड डेथ वही अशुद्ध अवस्था। तो शास्त्र में इसलिए बताया है कपो दिव्यंग पुत्र का जीन शुद्धे तो सत्ता। मनुष्य जीवन जो है वो सत्ता शुद्ध करने के लिए है। ये नहीं जो कभी बंदा का शरीर मिला कभी देवता का शरीर मिला लंप जंप किया और मर गया फिर एक शरीर मिला ये मनुष्य जीवन का नहीं। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म वस्तु क्या चीज है उसको समझने के लिए मनुष्य जीवन है। इसलिए ऋषभ देव बताया है कि अपना पुत्र को उपदेश जब दे रहा था वो रिटायर होने का पहले उनके सौ पुत्र थे उसमें सबको उपदेश दे रहा था महाराज ऋषभ देव। उसमें ही बताया जो बेटा अयंग देह नायंग देह देह भाजांग निलोके कष्टान कामान अर हतिवीर भुजान। जो पुत्र ये जो शरीर है अयंग देह निलोके मनुष्य समाज में शरीर तो सबको मिलता है। कुत्ता को भी मिलता है बंदर को भी मिलता है मनुष्य को भी मिलता है पेड़ को भी मिलता है और मक्खी को भी मिलता है सबको मिलता है शरीर। बाकी ये जो शरीर है विशेषकर मनुष्य शरीर अयंग देह निलोक मनुष्य समाज में मनुष्य लोग में जो शरीर मिला है नायंग देह देवायांग निलोके कष्टान कामान रहती केवल इंद्रिय तर्पण करने के लिए कष्ट करना तकलीफ उठाना न रहती ये उचित नहीं है। ये आजकल का जो सभ्यता है अभी तक वो एडवर्टाइजमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से हार्ड लेबर आजकल होता नहीं है। टाइम हो गया। अब देखिए मनुष्य जो है वो ठेला ठेलने को शुरू किया, रिक्शा चलाने शुरू किया, और भी उसको हार्ड लेबर ये जिक्र जो ये ठेला ठेलना और रिक्शा चलाना क्या मनुष्य का काम है? तो गधा का काम है, जानवर का काम है। मनुष्य का इतना नीचे ले आया, फिर ही बताते और भी परिश्रम, और भी परिश्रम। देखिए क्या सिविलाइजेशन है, सही वो गो खराब सब गधा सुअर का सिविलाइजेशन है। और शास्त्री बोला है ये सुअर का सिविलाइजेशन है। सुअर का सिविलाइजेशन क्या है? न दिन भर परिश्रम करना और गु खाना, बस कहां गु है कहां गु है। दिन भर परिश्रम करके और जहां गु मिला खूब खाया खूब तगड़ा हुआ फिर सेक्स। इसलिए मना करते हैं जीव अत्यंत परिश्रम करके और इंद्रिय तर्पण करना ये मनुष्य शरीर का काम नहीं है। ना अंग देह देव भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हते बिन भुजांग। ये तो सुअर का सिविलाइजेशन, ये कोई मनुष्य का सिविलाइजेशन है? मनुष्य का सिविलाइजेशन है कि उनको विशुद्ध करना, धर्मं विशुद्धं शुद्धं गुह्यं विशुद्धं दुर्बोध है तो मुश्किल समझना, ताकि शरीर को शुद्ध करना यही एकमात्र काम है। तपो दिव्यं पुत्र काजेन शुद्धेत सत्ता जस्माद् ब्रह्म सुखम अनंतम। सुख जो चाहते हो ये तो दुनिया में है नहीं, सुख का अर्थ है अनंत सुख, जो सुख का नाश नहीं होता उसका नाम है सुख। रमन्ते जोगिना अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासु परब्रह्म इति अभिधीयते। ये राम का अर्थ व्याख्या किया, जो राम का अर्थ होता है कि अनंत सुख में रमन करना, ये सब शास्त्र है। तो दमराज भी यही होता है कि ये शुद्ध करने के लिए, सत्ता को शुद्ध करने के लिए विशुद्धम जो धर्म है दुर्बोधम, यद्यपि समझना बहुत मुश्किल है कठिन है दुर्बोधम, बाकी एक दफे अगर आप समझ जाए कि वास्तविक धर्म क्या चीज है तो क्या लाभ होता है? जंग ज्ञात्या अमृतम अस्मृति, फिर उसको अमृतत्व लाभ हो जाता, इसका नाम धर्म है। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं आकर के जदा जदा ही धर्म सग्लानी भवती। भगवान कब आते हैं? जदा जदा ही धर्म सग्लानी भवती। ये जो धर्म है विशुद्ध जब ज्ञाता अमृतम अस्मृत है, इसको समझते नहीं अनशांड इधर उधर का सद्भर्म बनाते,